सुबह 10:30 बजे मानव के घर का माहौल बिल्कुल किसी शादी वाले घर जैसा था। मेहमानों से रौनक लगी थी। नाश्ता करके सब गेस्ट हाउस से यहीं आ गए थे। सभी काफी एक्साइटेड थे। हंसी मजाक बातों के बीच निकलने की तैयारी भी हो रही थी। अनीता जी ने पीली केसरिया बनारसी साड़ी पहनी थी। उनके साथ हिनाया, जो हल्की गुलाबी साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी। मानव की चाचियां, बुआ और कुछ करीबी रिश्तेदार महिलाएं भी तैयार थीं। मानव भी कुछ देर पहले कैफे से घर आ गया था और उसने सबको बहुत ही अच्छे से समझा भी दिया था कि वहां जाकर ज्यादा जुबान नहीं चलानी है, अपना फूहड़पन नहीं दिखाना और ठीक से बिहेव करना है। उसके ससुराल वालों के सामने उसकी और उसके परिवार की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। वो तो सबको लेकर जाने के फेवर में भी नहीं था, लेकिन अनीता जी ने यहां भी उसकी नहीं सुनी, जिसकी वजह से वो गुस्सा और उसकी इंस्ट्रक्शन सुनकर उसके रिश्तेदारों का मुंह बन गया था। मानव का रिश्ता इतने बड़े घर में हुआ है ये जानकर उसके सभी रिश्तेदार हैरान थे और उसका ससुराल देखने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहे थे। मानव को डर था कि कहीं वो लोग वहां जाकर कुछ गड़बड़ ना कर दे। खैर, सभी मिनी बस में बैठकर निकल गए। अनीता जी और इनाया अलग से कार में गए थे और उनके साथ ही शगुन की चीजों से सजी थाल भी थी। शेरगिल हाउस में आने वाले मेहमानों के ग्रैंड वेलकम की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। जैसे ही अनीता जी की गाड़ी शेरगिल हाउस के गेट पर पहुंची, उनके ठीक पीछे मिनी बस आकर रुकी। सभी बाहर निकले। सर्वेंट्स ने आगे बढ़कर शगुन का सामान उठाया। मिस्टर शेरगिल, दादाजी, नित्या की चाची और घर के बाकी बड़ों के साथ गेट पर खड़े थे। नित्या की माँ नहीं थी तो उसकी चाची ने अनीता जी को लाल गुलाब की माला पहनाई। दोनों तरफ की महिलाएं सत श्री अकाल और नमस्कार के साथ मिली। दोनों परिवार की महिलाएं एक दूसरे से गले मिल रही थीं। नित्या की चाची ने अनीता जी का हाथ पकड़कर कहा, आपका स्वागत है, आज से हम एक परिवार बन गए हैं। सभी को अंदर लाकर बिठाया गया और कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी के साथ स्नैक्स वगैरह सर्व किए गए। इतना बड़ा घर, जो नित्या की शादी के लिए बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया था, यहाँ की चकाचौंध देखकर मानव की तरफ से आई लेडीज की आंखें चौंधिया गईं। वो आंखें फाड़े मुंह खोले बस घर को देख रहे थे, जो उनके लिए किसी महल से कम नहीं था। जब स्नैक्स वगैरह सर्व हुए तो होड़ मच गई। वो बिहेव ऐसे कर रहे थे जैसे पहले कभी ये सब खाना तो दूर देखना भी नसीब ना हुआ हो, और सच भी था। न पहले कभी वो इतने बड़े घर गए और न आगे कभी उन्हें ये मौका मिलना था, तो हाथ आए मौके का वो पूरा फायदा उठा रहे थे और हर चीज टेस्ट कर रहे थे, आपस में बातें भी कर रहे थे। इनाया अनीता जी के साथ दादाजी और मिस्टर शेरगिल के पास बैठी थी। वो दादाजी और अनीता जी से बातें कर रही थी और मिस्टर शेरगिल बस उसे देख रहे थे कि इस आम से दिखने वाली लड़की में ऐसा क्या खास है कि हर कोई बस उसकी तारीफ करता रहता है। दादाजी, नित्या कहाँ है? उसे बुलाइए ना, मुझे उससे मिलना है। इनाया कब से नित्या से मिलने के लिए मचल रही थी। वो तो उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन अनीता जी ने उसे कहीं भी जाने से साफ मना किया था। इतने लोग थे यहाँ, अगर गलती से भी किसी से धक्का मुक्का लग जाता तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती, इसलिए उन्होंने उसे अपने पास ही बिठाया हुआ था। अभी बुलवाते हैं बेटा, दादा ने सौम्यता से कहा और गिर नित्या की कजिन को बुलाकर उसे लेकर आने को कह दिया। कुछ देर बाद नित्या ने अपनी बहनों और फ्रेंड्स के साथ वहां कदम रखा और उसे ड्राइंग रूम के बीच में लगे सोफे पर बिठाया गया था। लाल पीले डिजाइनर सूट में हल्के मेकअप, लाइट ज्वेलरी पहने उसका रूप निखर रहा था। शादी का ग्लो उसके चेहरे पर आने लगा था और अब वो पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी, जिसमें चार चांद लगा रही थी उसकी खुशी, जो होठों पर मुस्कान बनकर बिखरी थी। अनीता जी आगे बढ़ी। उन्होंने एक खूबसूरत लाल गुलाबी चुन्नी निकाली जिसके किनारे सोने की जरी लगी थी। उन्होंने बहुत प्यार से नित्या के सिर पर चुन्नी ओढ़ाई और उसे आशीर्वाद दिया, बेटी नित्या, आज से तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। अनीता जी की आंखें नम हो गई थी, खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। उन्होंने नित्या को गले लगाया। नित्या बेहद खुश थी। उसके तरफ के लोग भी अनीता जी का उसके लिए प्यार देखकर पुरसुकून हो गए थे, जबकि इस तरफ की कुछ लेडीज का मुंह बन गया था। अनीता जी ने नित्या को सोने का हार और छोटा सा पेंडेंट गिफ्ट किया। बाकी की महिलाओं ने भी नित्या को आशीर्वाद देते हुए छोटे छोटे गिफ्ट्स दिए। नित्या उनके घर की बहू बनने वाली थी और आज पहली बार वो उसे देख रहे थे, तो गिफ्ट देना बनता भी था। ज्यादातर औरतों ने पैसे ही दिए थे, लेकिन जैसा कि नित्या को पहले ही समझाया गया था, उसने सबके पैर छुए और जो दिया उसे मुस्कुराकर स्वीकार किया। इनाया ने आगे बढ़कर नित्या को गले लगाया और कान में फुसफुसाते हुए बोली, बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी दुल्हन, तुम्हारे चेहरे पर तो अभी से शादी का ग्लो आने लगा, शादी तक तो तुम कहर ढाने लगोगी। नित्या की आंखें खुशी से चमक उठी। तुम्हारे चेहरे पर भी प्रेगनेंसी का ग्लो आ गया है। देखो कितनी प्रिटी लग रही हो। अगर अभी मिस्टर हैंडसम तुम्हें देख ले तो उन्हें एक बार फिर तुमसे प्यार हो जाएगा। छेड़छाड़ दोनों तरफ से चल रही थी। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा और एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। नित्या को यूं खुलकर हंसते देखकर मानव के साइड से आई लेडीज की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो दबी आवाज में आपस में चुगली करने लगी। वहीं अनीता जी ने आगे बढ़कर दोनों की नजर उतार ली। नित्या ने इनाया को अपनी कजिन्स और फ्रेंड से मिलवाया। सबने उसकी तारीफ की। लड़के तो लाइन तक मारने को तैयार थे, वो तो नित्या ने उन्हें डांट कर भगा दिया। कुछ ही देर में इनाया उन सबके बीच ऐसे घुल मिल गई जैसे उन्हीं में से एक हो। दूर से मिस्टर शेरगिल उसे ही देख रहे थे, कैसे वो नित्या से खुलकर बात कर रही थी। दोनों ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे जैसे सगी बहने हो। नित्या इनाया का ख्याल रख रही थी, उसके लिए कुछ ना कुछ मंगवाए जा रही थी और इनाया भी उसका ख्याल रख रही थी। कभी उसके कपड़े ठीक करती, कभी गहने, तो कभी सिर से सरकते दुपट्टे को उसके सर पर जमाती, बिल्कुल एक बड़ी बहन जैसे। इन सब में लंच टाइम हो गया। अनीता जी ने जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन मिस्टर शेरगिल और दादाजी ने उन्हें रोक लिया कि लंच तैयार है, अब तो लंच करके ही जाने देंगे। उनके बहुत बोलने पर अनीता जी को मानना ही पड़ा। लालची औरतों की तो सोचकर ही लार टपकने लगी कि इतने बड़े घर में लंच में क्या क्या खाने को मिलेगा। अनीता जी ने दबी आवाज में सबको समझाया कि सर्वेंट सर्व करेंगे, जितना खाना हो उतना ही ले और आराम से खाएं, इंसानों जैसे। इस पर औरतों का मुंह बन गया। वो मन ही मन उन्हें कोसने लगी, लेकिन सामने से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। लंच का इंतजाम बाहर लॉन में किया गया था। खाने के स्टॉल्स लगे थे, चेयर टेबल्स भी लगे हुए थे और खाना सर्व करने के लिए हर डिश पर एक सर्वेंट लगा था। पंजाबी और मराठी दोनों व्यंजन थे। अमृतसरी कुलचे, पनीर मखनी, पूरन पोली, वरण भात, दाल चावल और तरह तरह के मिठाइयाँ। महिलाएं एक दूसरे से बातें कर रही थीं। अनीता जी नित्या की चाची और उनकी कुछ करीबी रिश्तेदारों के साथ बैठी लंच कर रही थीं। साथ ही उनके बीच बातें भी हो रही थीं। इनाया बाहर नहीं आई थी, वो नित्या और उसके बाकी कजिन्स के साथ अंदर ही बैठी थीं और मिस्टर शेरगिल ने उनके लिए लंच वहीं मंगवा दिया था। बातों और हंसी मजाक के बीच सबने लंच किया। लंच के बाद अनीता जी अपनी सारी महिलाओं के साथ वापस लौट आईं। शाम के वक्त अनीता जी ने घर के देवघर में गणेश पूजा और कुल देवता की पूजा करवाई गई। पूरे परिवार ने हवन किया और शादी की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। शेरगिल हाउस में भी शाम के वक्त अरदास और कुल देवता पूजा हुई। नित्या की दादी ने वाहेगुरु से नित्या के सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की।
रात को डिनर के बाद उसने नित्या को कॉल किया, जो उसने पिक नहीं किया, और कुछ ही मिनट बाद उसका मैसेज आया कि वो अपने कजिन्स और फ्रेंड्स के साथ है, तो अभी बात नहीं कर पाएगी। एक तरफ नित्या सबके साथ थी और दूसरी तरफ मानव बिल्कुल अकेला। उसके किसी कजिन से उसका कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं रहा था, ना कभी बात करना, ना मिलना। सालों की दूरियां और दिल में बसी कड़वाहट इतनी आसानी से कहाँ कम होती है। अभी भी वो किसी से ठीक से बात नहीं कर रहा था, कटाकटा सा रहता था। मानव ने उसे गुड नाइट का मैसेज किया और रूम से बाहर निकला तो लिविंग रूम में उसे इनाया बैठी मिल गई, जो मजे से आइसक्रीम खा रही थी। मानव की उदासी पल में गायब हो गई और चेहरे पर अनायास ही मुस्कुराहट आई, जिसे उसने जल्दी ही छुपा लिया और उसकी जगह गुस्से वाले एक्सप्रेशन लेकर इनाया की तरफ बढ़ गया। टू बी कंटिन्यूड।